नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यह दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
ओडिशा के मंत्री गणेश जी, खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था उसका पुनर्निर्माण, केदार धाम, बद्री धाम का पुनर्निर्माण, सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है, कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम शुरू हो गया।
इसके बाद गृहमंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट UG पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में CCTV निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गायस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाईब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।